तुम खाली लौट जाओगे तो दुनिया में यही हल्ला हुआ कि विष्णु का भजन करने वालों को भी निराशा होती है और उदाहरण एक ध्रुव भजन किया कुछ नहीं मिला तो तुमको तो लोग क्षमा कर देंगे, बच्चा था कहेंगे भाई बच्चा था बेचारे को मांगने नहीं आया, कि मुझको कोई क्षमा नहीं करेगा, मेरी भारी अपजस होगा, मेरी भारी अपकृति होगी, इसलिए मेरी कृति की रक्षा के लिए मेरे रिपुटेशन को इंटैक्ट रखने के लिए बेटा स्वीकार करो। अब जब सोता ना विष्णु का लोग कहते ना अरे भाई देखो वो बच्चा था आपका फुसला दिया बच्चे को, उसको मांगने नहीं आया, उसको देने भी नहीं आया, तो मेरी प्रतिष्ठा दाव पर है, मेरी प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए। ध्रुव महाराज चुपचाप थे, भगवान ने अपने से कह दिया एक बेटा इस पृथ्वी का साम्राज्य 36,000 वर्षों तक तुम इस पृथ्वी का राज्य, तुम अपने पिता के उत्तराधिकारी तुम बनोगे और इसके बाद ध्रुव लोग इधर देख लीजिएगा इस दिशा में दिखाई पड़ेगा, वह बैकुंठ ही है, बैकुंठ इस मटेरियल स्काई में स्थित है लेकिन वह बैकुंठ है। जैसे हम बार बार आप लोगों से कहते हैं जहां पर दिल्ली में आप जाएंगे तो एक अमेरिका की एम्बेसी है दिल्ली में है लेकिन वो बाउंड्री के अंदर वो अमेरिका ही है, भले ही दिल्ली है लेकिन वो है अमेरिका, वो छोटा सा अंदर एम्बेसी जानते हैं ना दूतावास होता है, वो सारे अमेरिका के नियम लागू हैं। वैसे ही ध्रुव लोग यद्यपि की वो मटेरियल स्काई के अंदर सिचुएटेड है लेकिन वो बैकुंठ ही है अंदर, तो बैकुंठ से जब ध्रुव महाराज निकले थे तो यही था पहला एम्बिशन था कि ठीक है हम दो भाई हैं आधा राज्य मुझे मिलना चाहिए, लेकिन घर से निकले तो कहेंगे भगवान विष्णु से ले आधा के हमको, मैं तो ज्येष्ठ पुत्र पूरा मिलना चाहिए। जब थोड़ा और गांव से बाहर गए तो कहे कि वही क्यों, हमको ऐसा राज्य चाहिए कि हमारे पिताजी से भी अच्छा राज्य चाहिए, पिताजी का जितना उससे भी बड़ा उससे समृद्ध चाहिए। थोड़ा और पढ़े तो रहा कि नहीं हमको ऐसा राज्य चाहिए जो कि ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है, मनु महाराज को भी नहीं प्राप्त। और जब और आगे बढ़े थे तो अम्बिशन बढ़ा था कि नहीं ऐसा समृद्ध राज्य चाहिए अब तक किसी को नहीं मिला है, मैं फर्स्ट होना, इतना बढ़िया राज्य इतना बढ़िया स्थान अब तक किसी को नहीं मिला है वह हमको चाहिए, इतना भारी अम्बिशन था ध्रुव महाराज का। तो भगवान ने कहा कि हाँ ऐसे तो और यहाँ पर सबको मिला हुआ है तो यह ध्रुव लोग अब तक किसी को नहीं मिला, बैकुंठ किसी को नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाओगे वो बैकुंठ है मेरी सेवा में तुम आ जाओगे। तो ध्रुव महाराज भगवान कह रहे थे, अब भगवान के प्रेस्टीज इशू का प्रेस्टीज था ना, भगवान की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ध्रुव महाराज ने स्वीकार कर लिया लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज बहुत कुछ कहते रहे भगवान से नहीं। अब देखिए एक बार वृंदावन आ गए हैं तुमको दुख ऐसे लग रहा था कि मैंने शुद्ध भक्ति नहीं किया, सकाम भाव से भगवान की आराधना किया, उसी कहा के फिर से उसी पॉलिटिक्स में उसी घर गिधर से इतना झगड़े हैं तकरार हैं उन्हीं के पास जाना पड़े। अब वृंदावन यदि मैंने शुद्ध भजन किया होता तो भगवान वृंदावन अब यहाँ से लौटना क्या, यही रहता भगवान अपनी सेवा में रख लेते, लेकिन उसे बहुत उनको पश्चाताप हो रहा, बहुत रो ही रहे थे ध्रुव महाराज रो ही रहे थे, दुख तो था ही तब तक एक और दुख आ गया। देखिए जब भगवान किसी को दुख देते हैं तो दुख भी जम के देते हैं, ध्रुव महाराज को पहला तो दुख था कि माता ने तिरस्कृत कर दिया, पिता ने तिरस्कार किया जंगल से बाहर, यहाँ आए तो हार्ड सीप आप देख ही रहे ना, तो खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना न पानी पीने का कुछ कहाँ रह, वह दुख है। इसके बाद दुख बढ़ते गया कि यह दुख था कि भगवान हमको पुनः भेज रहे हैं, यह तो दुखी था ना। दूसरे एक दुखद घटना घटी जैसे हम सुबह में थोड़ी चर्चा किए थे, सब कुछ हो गया सेटल हो गया भगवान अब जाएंगे, तो भगवान गरुण को संकेत किए टेकअप कहते हैं ना है? टेकअप कर तो बता दिए ऐसे ऐसे तो उड़कर तो उधर जा सकते थे गरुण, लेकिन वो गरुण भी ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ठीक ऐसे जगह पाए कि हाँ मैं दोपहर में चर्चा किया था, भगवान प्राय बैठते हैं तो अपना गोरुंग के कंधे पर बैठते हैं तो एक पैर इधर रखते हैं, एक पैर उधर रखते हैं, लेकिन उसने पता नहीं क्या संजोग की बात है किसी दोनों पैर एक तरफ करके बैठ गए। प्राय वैसा नहीं बैठते हैं, लेकिन उस दिन दोनों पैर एक तरफ करके बैठ गए। हम कभी सोचते हैं तो भाई से गिरने का भय नहीं होगा भगवान को, एक तरफ से तो उड़ रहा गिर जाएंगे तब तो क्या होगा, लेकिन वो नहीं सोचना चाहिए, वो गिरने का भगवान को भय नहीं है। और गिर भी जाएंगे तो उनका क्या होगा, हम तो उड़। तो इसके बाद गरुड़ जी उड़ान भरे, भगवान के दोनों चरणों की छाया ध्रुव महाराज के सिर पर, ठीक है ऐसे उड़ाते इस पर। ध्रुव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, पर निताई पद कमल कोटि चंद सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा। हम लोग तो गान करते हैं ना, हम लोग को अनुभव नहीं है कि, और उनके सचमुच छाया इस पर पड़ा तो ध्रुव महाराज को कितनी भारी प्रसन्नता हुई होगी। लेकिन तुरंत ही उस प्रसन्नता को दुख में भगवान ने बदल दिया, बदला ले लिया भगवान। जितना दुखी थे उससे भी ज्यादा सुखी थे, उससे भी ज्यादा दुखी होना पड़ा। जही वो तो थोड़े देर के लिए था, बाहर गया ध्रुव महाराज फेंटेड होकर गिर पर। इसके बाद ध्रुव महाराज ने जो विलाप किया है, जो रोदन किया है, अब तो भागवतम पढ़ लीजिएगा। तो वहां दुख था घर पर कि हम मैं राजा नहीं बनूंगा, और अब क्या दुख है मैं राजा बनूंगा। दोनों दुख है, लेकिन इस दुख में उस दुख में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक जगत में भी दुख होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का दुख रिलीजेबल होता है, उस दुख का भी आप आस्वादन कर सकते हैं। वैसे वैसा दुख हम लोग को हो जाए तो बड़ी अच्छी, ध्रुव महाराज जैसा है वैसा दुख हो जाए कि हम लोग को अब लौटना पड़ रहा है इसलिए दुख हो, तो आध्यात्मिक यह जो दुख था यह आध्यात्मिक दुख था, और इस दुख को करोड़ों सुख से भी अच्छा माना जाता है, कोटि कोटि सुख की अपेक्षा इस तरह का दुख होता है। यह दुख रिलीजेबल होता है, रिलीजेबल समझते, आस्वादनीय दुख है यह। वैसा दुख भी किसी को मिल जाएगा तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है, संचय ध्रुव महाराज लौटे। लौटे तो नारद जी ने और ऋषि ने बता दिए जाकर महाराज उत्तानपाद के कि आपका पुत्र आ रहा है, और उत्तानपाद को यह बताया गया है कि यह लड़का था तो ध्रुव महाराज आ रहा है और भगवान के चरणों को स्पर्श किया हुआ छुआ है अपने हाथ से, भगवान के चरणों को उसने हाथ से स्पर्श किया हुआ, भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके आ रहा है लड़का। तो महाराज उत्तानपाद को बहुत प्रसन्नता हुई, और उस समय तक सुरुचि भी थी वो भी मनोमालिन्य उसका नष्ट हो गया था, वो बहुत दुख में थी। उनकी सुरुचि सौतेली माँ जिसके कांड भाग गए, वो भी बड़ा उसका हृदय जलता रहता था कि मेरे कारण से मैंने अपने पुत्र को दुर्वचन किया, साधु भक्त को अच्छे भक्त ध्रुव महाराज को मैंने ऐसा अपमानित किया, बड़ा उसका हृदय संतप्त रहता। तो वह भी बेचारी 6 महीने न तो बढ़िया से खाई थी, न तो स्नान की थी, न शयन की थी सौतेली में। और इनका जो भाई था वो हमेशा पूछता रहता था, साथ साथ खेलते रहते थे। एक दिन से वो गायब है लड़का, ध्रुव महाराज गायब, तो पूछता रहता था कि भैया कहाँ है, ध्रुव कहाँ है। वो अभी उसके बिना रोता रहता था, लोग शांत करते थे, शांत आएगा वहां गया है, मामा गाँव गया है, वहां गया, झूठ बूढ़ बच्चे से समझाते थे, लेकिन वो बोलकर मानता नहीं था, रोता रहता था। तो उस दिन सब लोग जब पता लगा महाराज उत्तानपाद को ध्रुव आ रहा है तो पूरा नगर को बढ़िया से सजाया गया, और इसके बाद सब लोग स्वागत के लिए आए थे। उत्तानपाद महाराज तो आए ही थे, साथ साथ सुनीति और सुरुचि उनकी दोनों पत्नियां आई थी, और पुत्र भी आया था, उत्तम कुमार भी आया था। बहुत प्रसन्नता हुई ध्रुव महाराज ने अपनी माँ को, दोनों माताओं को समान रूप से प्रणाम किया, अपनी उनकी माँ थी। और इसके बाद सुरुचि के विषय में ऐसा रहता है कि दोनों इतना रो रहे थे कि उनके आंसुओं से ध्रुव महाराज का अभिषेक हो गया, पूरा उनका शरीर कपड़ा वस्त्र भींग गया आंसुओं से। पिताजी भी रो रहे थे, भाई तो ज्यादा अब रो रहे थे, तो खुश हो रहा था, उसको राजनीति का पॉलिटिक्स का ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ था, तो वो इतना ही खुश था कि आ गए, साथ में उनके साथ हो लिया, सुरसो तक मामा गांव गए थे, वहां से आए हुए हैं। इसके बाद लेकिन इतनी जनता थी, इतनी भीड़ थी कि छोटे छोटे बच्चे थे, ध्रुव देखने में कठिनाई होती थी। तुरंत एक हाथी की व्यवस्था की गई कि ध्रुव महाराज हाथी पर चढ़, सब लोग देख सकेंगे। तो छोटा सा बच्चा ऐसे चढ़ रहा है तो कितने लोग देख सकते थे, तो हाथी की व्यवस्था की, हाथी पर बैठाया गया ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज ने अकेले बैठना स्वीकार नहीं किया कि नहीं मैं अकेले नहीं बैठा, उत्तम हमारा छोटा भाई ही बैठेगा। तो दोनों को एक ही हाथी पर दोनों को बैठा कर उनका स्वागत हुआ और ध्रुव महाराज अपने पिता के घर पर आए। तो जैसे हम लोग प्रॉमिस किया, थोड़ा प्रसाद में देरी हो गया तो हमको भी संक्षिप्त रहना पड़ा, ठीक से एग्जैक्ट हमने समय से सब खत्म किया। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है एक दो तो